ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సో ఆజకల్ హమ్ సాత్ వే స్కంద్ కే శ్లోకం పర్ ఉపదేశ దే రహే, సో యే హై సాత్ వే స్కంద్ ఛఠే అధ్యాయ శ్లోక నంబర్ 24. తస్మాత్ సర్వేషు భూతేషు దాయాం కరుత శోదాం భావాం అసురాం ఉన్మూచ్య యో యాయా కృష్యాత్ యదోక్షజా. తస్మాత్ సర్వేషు భూతేషు దాయాం కరుత శోదాం భావాం అసురాం ఉన్మూచ్య యాయా తుష్య యదోక్షజా. తస్మాత్ సర్వేషు భూతేషు దాయాం కరుత శోదాం భావమసురాం ఉన్మోచ్య యాయా తుష్య యదోక్షజా. తస్మాత్ సర్వేషు భూతేషు దాయాం కరుత శోదాం భావాం అసురాం ఉన్మోచ్య యాయా తుష్య యదోక్షజా.
దయాం కరుత సౌహృదం భావమాశురం ఉన్ముచ్య అయా తుస్య తదోక్షజ.
మాతాజీ శబ్దార్థ
తస్మాత్ అతేవ సర్వేషు సమస్త భూతేషు జీవం పర దయాం దయా కురుత దిఖలావు సౌహృదం మైత్రీ భావం భావ ఆశురం అసురో కా. जो मित्रों तथा शत्रुओं में पृथक करते हैं उन्मुच्य त्याग कर अया जिससे तुष्यति प्रसन्न होते हैं। अधोक्षज भगवान जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अतः हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि ऐसे भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी प्रकृति छोड़ दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। दोहराएंगे, अतः हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि ऐसे भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी प्रकृति छोड़ दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय श्लोक 55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्त्वतः। मनुष्य केवल भक्ति से परमेश्वर को यथा रूप में समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने अंततः अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दी कि वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत विज्ञान का उपदेश देकर भक्ति की विधि स्वीकार करे। उपदेश देना अथवा प्रचार करना भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के उपदेश कार्य की सेवा में लग जाता है उससे भगवान तुरंत ही अति प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 18 अध्याय श्लोक 69 में की है, न च तस्मान मनुष्य सु कश्चिन में प्रियकृतम। इस संसार में न तुझसे बढ़कर प्रिय मेरा दास है, न भविष्य में कभी है, न भविष्य में कभी इससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई होगा। यदि कोई भगवान के यश तथा उनकी महिमा का उपदेश करके कृष्ण भावनामृत को फैलाने का प्रयास करता है तो भले ही वह पूर्ण रूप से शिक्षित क्यों न हो, भगवान का सर्वप्रिय दास बन जाता है। यह भक्ति है। ज्यों ही शत्रु तथा मित्र का भेदभाव किए बिना मानवता के लिए वह सेवा करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश दिया है कि वह गुरु एवं भक्त बने और कृष्ण भावनामृत का उपदेश करे। जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश। भगवान की अनुभूति करने का सरलतम यही उपाय है। ऐसे उपदेश कार्य से उपदेशक तुष्ट होता है और जिन्हें उपदेश दिया जाता है वे भी तुष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व में शांति लाने की विधि यही है। भोक्तारम जग तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परमेश्वर संबंधी ज्ञान के इन तीन सूत्रों को समझे कि वही परम भोक्ता हैं, वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं तथा वे सबों के श्रेष्ठ सुहृद तथा सखा हैं। उपदेशक को ये सत्य स्वयं समझने चाहिए और सबों को इन्हीं का उपदेश देना चाहिए, तब सारे विश्व में शांति रहेगी। इस श्लोक में सौहृदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया लोग कृष्ण भावनामृत से अनभिज्ञ हैं, अतः उनका हितैषी बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह बिना किसी भेदभाव के कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे। क्योंकि भगवान विष्णु हर एक के अंतस्थल में विद्यमान है, अतः प्रत्येक शरीर विष्णु का मंदिर है। मनुष्य को चाहिए कि इस ज्ञान का दुरुपयोग दरिद्र नारायण जैसे शब्दों के बहाने से न करे। यदि नारायण दरिद्र अर्थात गरीब मनुष्य के घर में वास करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं होता है कि वे दरिद्र हो गए। वे सर्वत्र रहते हैं, दरिद्र के घर में और धनी के घर में भी, किंतु सभी परिस्थितियों में वे नारायण बने रहते हैं। यह सोचना कि वे निर्धन या धनी हो जाते हैं भौतिक अनुमान है। वे सदैव सदैश्वर जो पूर्ण अर्थात वे सदा छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं।
ओम ज्ञातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलक्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्य मनोभीष्टं साधगामिनं भूतले स्वयं रूपा कदा वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु श्रीरूपां सद्वैतं सुहृतं प्रजनासहितं कृष्णं श्रीराधा कृष्णपदं सहगना ललिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शिशुवान वांचा कल्पा तरव्यश कृपा सिंधु भय वचल परिशानां भवने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद हरे तस्मा सर्वेषु भूतेषु दायां कुरुतः सोऽर्धं भावम् असुराम् उन्मुच्य जायातु षड् अधोक्षुः। तो ये श्लोक का उच्चारण प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। जैसे आपको आप जानते हो प्रहलाद महाराज शुरू से ही आत्मज्ञानी थे और प्रहलाद महाराज को 12 में से एक महाजन माना जाता है। सही मु जनाद समूह को हमारा कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्मो बलीर भाई ऐसा कर भाई। तो प्रहलाद महाराज जब माता के घर में थे उन्होंने नारद मुनि जी के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। जब प्रहलाद माता के घर में थे उस समय उसके उनके पिता बड़ी गहरी तपस्या का पालन कर रहे थे मंडारा पर्वत में। आप और हम अगर आप योगा करते भी होंगे और आपको हम कहें हाथ ऊपर उठाओ अब कितनी देर उठा लोगे? 15 मिनट कि 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। रामदेव भी शायद 1 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। पर हिरण्यकशिपु हाथ आकाश की तरफ रखकर खड़े थे देवताओं के 100 वर्षों के लिए 36,000 सालों के लिए खड़े रहे। देखो क्या तपस्या। तो प्रहलाद महाराज तू उस वक्त प्रहलाद महाराज माता के घर में थे और देवताओं का विचार था कि जैसे ये बच्चा पैदा हुए उसका वध कर दिया जाए। नारद मुनि ने कहा कि इस औरत के घर में एक भक्त है असुर नहीं। फिर उन्होंने छोड़ दिया और फिर प्रहलाद ने प्रहलाद की मां को नारद मुनि के आश्रम में स्थान दिया गया जहां की उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त किया। तो प्रहलाद महाराज ये उपदेश दे रहे हैं अपने साथियों को। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मेरे प्रिय मित्र जो कि असुरों के खानदान में जिन्होंने जन्म लिया है तुम सब क्या करो? इस प्रकार का कार्य करो कि तुम परम भगवान को संतुष्ट कर सको। ये होना चाहिए हम सबका लक्ष्य। यह है शास्त्रों का निर्णय। क्या? भक्त्या मम अभिजानती कि भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा तुम परम भगवान को संतुष्ट कर सकते हो और कोई साधन नहीं। तो यह है शास्त्रों का निर्णय। कि भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए भक्ति योग के माध्यम से। तो यही उपदेश बार बार बताया जा रहा है, यही उपदेश बार बार बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक हम बार बार नहीं सुनेंगे हम इसका पालन नहीं करेंगे, इसलिए हमें बार बार सुनने की आवश्यकता है। तो परम भगवान किस कार्य से प्रसन्न होते हैं? परम भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी शिक्षा के आधार पर चलते हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि परम भगवान की सेवा में जुड़ो जो कि भौतिक ज्ञान के पार है। जैसे कि जिन्हें परम भगवान का ग्रह समझना चाहें तो सेवा ही एक साधन है। जैसे उदाहरण के लिए परम भगवान प्रकट हुए भगवान नरसिंहदेव जी के रूप में। नरसिंहदेव जी के रूप में क्यों प्रकट हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के वर दे दिए थे प्रहलाद हिरण्यकश्यप को, और भगवान के पास और कोई उपाय नहीं था। अगर किसी साधारण व्यक्ति को कहो कि भगवान प्रकट हुए थे आधे पुरुष आधे पशु के रूप में, तो वो तो स्वीकार नहीं करेगा, कहेगा कैसे संभव है। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि परम भगवान जो है ये भौतिक ज्ञान के पार है। परम भगवान को अगर आप समझना चाहते हो तो सेवा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हमारा शुद्ध मन शुद्ध हृदय शुद्ध बनता है, और फिर उन नेत्रों से आप भगवान को समझ सकते हो। जैसे कि हरि नाम के उच्चारण का एक लाभ यह है कि हृदय की मैल दूर होती है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से कार्य करो जिसके द्वारा परम भगवान संतुष्ट रहे। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए क्या कहा? जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागो। तो ये होना चाहिए भाव हमारा। तो क्या है भक्ति के लिए अनुकूल? भक्तों की संग में रहना, श्रवणम कीर्तनम का पालन करना। सब भक्तों के लिए श्रवणम कीर्तनम का जो माध्यम है वो सबसे महत्वपूर्ण है। श्रवणम कीर्तनम का अर्थ है ना है कि हम भगवान के नामों का उच्चारण करें, पर भगवान की लीलाओं का गुणों का भी चर्चा करें। जैसे इस महीने हम लोग चंदन यात्रा मना रहे हैं, आपने देखा होगा कि भगवान सजे हुए हैं चंदन के साथ, और कई बार जो बड़ी मूर्तियां हैं उनको भी चंदन के साथ सजाते हैं। तो ये चंदन यात्रा का उत्सव शुरू कैसे हुआ था? ये शुरू हुआ था माधवेंद्रपुरी के माध्यम से। उससे पहले महाराज इंद्र दुमना के समय भी जगन्नाथ जी को चंदन के साथ ढका जाता था, पर माधवेंद्रपुरी ने ये चंदन यात्रा का उत्सव आरंभ किया। माधवेंद्रपुरी बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे, और एक दिन जब उन्होंने गोवर्धन परिक्रम समाप्त किया था तो गोविंद कुंड में विश्राम कर रहे थे, जबकि एक खूबसूरत ग्वाला आया और जिसने उन्हें एक मटकी दूध की मटकी दे दी और कहा आप ये दूध पीजिए और मैं लौटता हूं खाली मटकी लेने के लिए। माधवेंद्रपुरी ने दूध पीकर राह देखी पर वो ग्वाला लौटा नहीं, तो उन्हें हल्की सी नींद आ गई जिसमें उन्होंने उसी ग्वाले का दर्शन प्राप्त किया। वो ग्वाला माधवेंद्रपुरी के हाथ को पकड़कर ले जा रहा था कहां? झाड़ियों के पास, जहां की भगवान की एक प्राचीन विग्रह गोपाल विग्रह जिसकी स्थापना वज्र ने की थी लगभग 5,000 साल पूर्व छुपा हुआ था। ये विग्रह छुपाया था पुजारियों ने क्योंकि उस समय मुसलमानों का शासन था और उनके द्वारा कई हिंदू मंदिर नष्ट हो गए थे। तो मदनपुरी को जब पता लगा कि वही ग्वाला जिसने जिसे दूध जो दूध लेकर आया था वो वही परम भगवान है, तो वो शर्मिंदा हो गए। शर्मिंदा हो गए क्यों? एक, उन्होंने भगवान से सेवा ले ली, भगवान आए थे ग्वाले के रूप में, उन्होंने दूध पिलाया। ऊंचे कोटि के भक्त भगवान से सेवा लेना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं, तो वो शर्मिंदा हो गए। दूसरा, उन्हें पता लगा वो भगवान को मिले और भगवान को पहचान नहीं पाए। खैर, अगले दिन सुबह दूसरे ब्रिजवासियों के साथ गए वो उसी स्थान पर, झाड़ियों को काटा, खोदा और भगवान के विग्रह को प्राप्त किया। उस विग्रह की स्थापना की उन्होंने, मूर्ति स्थापना की। दो दिन में मदनपुरी ने सबको जोड़कर बड़े सुंदर रूप से ठाकुर जी की स्थापना की। इस प्रकार उनकी पूजा चलते गई दो सालों के लिए। पर फिर माधव और स्थापना के दौरान 900 लोटे जल गोविंद कुंड के पानी लेकर आए भगवान का अभिषेक करने के लिए। क्योंकि भगवान ने क्या कहा था मदनपुरी को, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे दबाया हुआ है, छुपाया हुआ है, मुझे वहां से निकालकर मेरी स्थापना करो। तो 900 लोटे आए थे पानी के, इसे भगवान को नहलाया। तो और पंचगव्य और पंचमृत से उनका स्नान किया। पर जब भी भगवान को गर्मी लग रही थी, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा भारी हूं कि तुमने मेरी स्थापना की, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मेरे चंदन लेकर आओ। मदनपुरी ने दो ब्राह्मणों को दीक्षा दी और मदनपुरी सारा दिन ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे और रात को भगवान को सुलाने के बाद थोड़ा सा दूध पीते थे, बस यही थी उनकी खुराक और कुछ नहीं। और मदनपुरी इन दो ब्राह्मणों की पर जिम्मेदारी सौंपकर आगे बढ़े रेमुना की ओर, जगन्नाथपुरी की ओर चंदन आने के लिए। रास्ते में वो रुके रेमुना में, जहां एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है राधा गोपीनाथ का। वहां जब पहुंचे तो उनकी इच्छा थी कि अगर मुझे यहां चखने का मौका मिल जाए, क्या प्रसाद बनता है भगवान के लिए, तो मैं अपने विग्रह के लिए भी इस प्रकार का प्रसाद बनाऊंगा। पर ये भावना प्रकट हुई जबकि भगवान को भोग लग रहा था और चखे बिना मदनपुरी छोड़कर चले गए बाजार में अपना भजन करने के लिए। भगवान को पता था उनके भक्त की क्या इच्छा थी। सर्व ईश्वर सर्वभूता नाम ये देश है रजुना तेरे। तो भगवान ने क्या किया, एक खीर का प्याला चुरा कर छुपा दिया पर्दे के पीछे और पुजारी को कहा, गोपीनाथ विग्रह के पुजारी को, कि मैंने खीर का प्याला चुरा कर छुपाया है, तुम कृपा करके उसे लेकर बाजार में जाओ, जहां कि तुम्हें मदनपुरी नाम का भक्त मिलेगा। पुजारी को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर छुपाया है, कैसे संभव है। तो जब गए तो उन्होंने देखा सचमुच, सोचने लगे कौन है वो भाग्यवान व्यक्ति जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। और फिर वो बाजार में गए, पुकार रहे थे कौन है, मदनपुरी नाम का कोई व्यक्ति है यहां। मदनपुरी ने जब अपना नाम सुना तो आगे आए। पुजारी ने कहा, तुम्हारा क्या सौभाग्य है कि तुम्हारी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। खबर फैल गई पूरे शहर में कि उस शहर में एक ऐसे भक्त उपस्थित है जिनकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। तो जहां भी वो जाते थे भीड़ हो जाती थी लोगों की, महाचंद्र पूरी शर्मिंदा हो गए। जो भक्त हैं वो ज्यादा वो प्रशंसा नहीं चाहते, खुशामद नहीं चाहते, भौतिक स्थिति में तो हम हमेशा खुशामद चाहते हैं। तो महाचंद्र पूरी ने देखा जहां वो जा रहे थे भीड़ हो जाती थी, तो वो स्थान से वो चल पड़े और गए जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में जब गए उन्होंने जगन्नाथपुरी के अधिकारियों को कथा सुनाई किस प्रकार गोपाल भगवान प्रकट हुए थे। भगवान ने उन्हें आदेश दिया क्या मेरे लिए क्या लाने के लिए चलना। तो जगन्नाथपुरी मंदिर के अधिकारियों ने उनका सहयोग दिया चंदन इकट्ठा करने में, और वो लौट चंदन लेकर और कपूर लेकर लौट रहे थे कहां जाने के लिए गोवर्धन। पर रास्ते में कहां रुके रमना में। उस समय उन दिनों में लगभग चुंगी वाले सब जगह मुसलमान थे, तो भगवान चाहते नहीं थे क्योंकि भक्त को ये चुंगी वाले तंग करें। तो भगवान ने माधवपुरी की परीक्षा ली थी, उन्होंने ऐसा आदेश दिया क्या जाओ पैदल गोवर्धन से कहां तक जगन्नाथपुरी तक, लगभग 1800 किलोमीटर की यात्रा। अगर आपको कहा जाए 1800 किलोमीटर की यात्रा करो पैदल राधा राजबिहारी के लिए चंदन लाने के लिए, आप ऐसे कितने भक्त करने करोगे, कोई नहीं। तो माधवेंद्रपुरी की भगवान ने परीक्षा ली और तुरंत ही वो तैयार हो गए। तो वह भगवान बड़े प्रसन्न थे कि माधवेंद्रपुरी ने पूरी यात्रा की। और फिर भगवान चाहते नहीं थे कि उनको वापस आने में तकलीफ हो, तो भगवान ने माधवेंद्रपुरी को गोपाल विग्रह हैं जिनकी वो उपासना कर रहे थे कहां गोवर्धन में। तो गोपाल विग्रह ने कहा मैं आभारी हूं कि तुमने मेरी स्थापना तुम चंदन ले आए हो, पर मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, तो तुम ये चंदन जो मेरे लिए इकट्ठा किया है गोपीनाथ के शरीर में लगा दो, और गोपीनाथ के शरीर में लगाना और मेरे शरीर में लगाना एक बराबर है। गोपीनाथ का शरीर ठंडा होगा तो मेरा शरीर भी ठंडा हो जाएगा। तो माधवपुरी ने अगले दिन ये सपना सुनाया पुजारी को, पुजारी जी तो बड़े खुश हो गए, उन्हें 80 पाउंड चंदन मिला। फिर माधवपुरी वहां ठहर कर 3 हफ्ते के लिए उन्होंने सिखाया पुजारियों को भगवान को कैसे सजाना चंदन के साथ। तो ये कथा मैंने संक्षेप में कही है आपको। तो यहां प्रहलाद महाराज कह रहे हैं क्या कि हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए, और भगवान की सेवा में जुड़ने का अर्थ है श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाना, और श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाने का अर्थ है भगवान के नामों का उच्चारण, भगवान के उपदेश, भगवान की लीलाओं का स्मरण। जैसे आज रुक्मिणी जी का भी जन्मदिन है सुबह, तो रुक्मिणी के विषय में कहा जाता है कि वो सबसे खूबसूरत थी, कोई उनकी खूबसूरती की तुलना नहीं कर सकता था। रुक्मिणी के अनेक गुणों का वर्णन है, कहा गया है उसका चेहरा अत्यंत खूबसूरत था, वो शर्मीली थी, ऊंचा चरित्र था, तेज बुद्धि थी, सारे शुभ लक्षण उनके शरीर में थे, बड़ी दयालु थी, उनका व्यवहार सदा आदरणीय था, बिल्कुल आदरणीय पत्नी थी और बड़ी खूबसूरत एरिस्टोक्रेटिक अच्छे भाव की अच्छे खानदान से, और हमेशा भगवान को सेवा की भावना रखती थी। और उनका मन का भाव था केवल कृष्ण की सेवा, और हमेशा हंसते रहती थी, और उनका मन जो था सदा भगवान में रहता था। तो उनके पिता का नाम था भीष्माख्या, वो वायुदर्वा के राजा थे जो कि महाराष्ट्र अमरावती के पास है। तो रुक्मिणी के जो पिता थे और माता, उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी का विवाह हो भगवान के साथ। भगवान उस वक्त कहाँ थे? द्वारका में। रुक्मिणी का एक भाई था, उनके पांच भाई थे, महाराज भीष्माख्या के छह बच्चे थे, पांच भाई पांच बेटे और एक बेटी। तो रुक्मिणी के सबसे बड़े भाई का नाम था रुक्मी, दूसरे का नाम था रुक्मा रत्ना, तो पांच भाई थे। रुक्मी जो था उसके हृदय में ईर्ष्या थी, किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। वो चाहता नहीं था कि मेरी बहन का विवाह हो कृष्ण के साथ, वो चाहता था कि उनका विवाह हो किसके साथ? शिशुपाल के साथ। तो जबरदस्त, और पिता की इच्छा थी कि मेरी बेटी की शादी हो जहां वो चाहती है, पर पिता भी मजबूर थे क्योंकि रुक्मी का इतना प्रभाव था। रुक्मी का नहीं नहीं नहीं, शिशुपाल से ही शादी होगी। तो शादी की तैयारी हो गई थी और उनकी राजधानी सजी हुई थी शादी के प्रबंध के साथ। रुक्मिणी चिंता में थी, क्या करूं? तो रुक्मिणी ने एक विश्वास वाले ब्राह्मण को सेवा दी, एक पत्र लिखा रुक्मिणी ने किसे? भगवान के लिए, और कहा मेरा भाई जबरदस्ती मेरी शादी करा रहा है, आप मुझे आकर बचाओ, अपहरण कर दो मेरा। तो ये ब्राह्मण हजार मील की यात्रा की पैदल द्वारका में पहुंचे। जब दो भगवान के महल में पहुंचे तो ब्राह्मण ने चौकीदार से कहा कि मैं खास संदेश लेकर आया हूं, ये भगवान का दर्शन चाहिए। तो मैं खास संदेश लाया हूं, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए। भगवान तो भगवान ने ब्राह्मण का स्वागत किया, भगवान ने फिर से हमें दिखाया कि शुद्ध ब्राह्मण का स्वागत कैसे किया जाता है। जैसे भगवान ने सुदामा ब्राह्मण का स्वागत किया था, बिठाकर चरण धोए, तो भगवान ने इस ब्राह्मण को बिठाया, उनके चरण धोए, फिर भगवान ने उनके चरण को अपने पैरों में रखकर उनके पैरों का मसाज किया भगवान ने। और भगवान ने पूछा ब्राह्मण से, क्या तुम्हारा मन संतुष्ट है? क्योंकि जब तक मन संतुष्ट नहीं रहेगा तुम भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। क्या तुम्हारा मन शांत है? उन्होंने पूछा पहले, क्या तुम्हारा मन शांत है? क्योंकि जब तक मन शांत नहीं रहेगा भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रभुपाद जी इस विषय में समझाते हैं कि मन शांत रहता है जब आपके मन में एक ही भाव हो कृष्ण भक्ति का। आगे भगवान ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम संतुष्ट हो? क्योंकि जब तक तुम संतुष्ट नहीं रहोगे तुम्हारा मन शांत नहीं रहेगा। इस विषय में वामन देव की कथा पढ़ते हो भगवतम में, कि वामन देव जी पहुंचे थे बाली महाराज के यज्ञशाला में। बाली महाराज ने उनका स्वागत किया, आदर दिया और बाली महाराज ने पूछा, मैं क्या सेवा कर सकता हूं तुम्हारे लिए? आपने मेरे पूरे खानदान को पवित्र बना दिया है। ब्राह्मण ने कहा, वामन देव ने, अगर आप मुझे कोई देना चाहते हो तो उतना स्थान दे दो जहां मैं 3 कदम रख सकूं, बस और ज्यादा नहीं चाहिए। बाली महाराज ने कहा, तुम निर्दोष बालक में जलाते हो, इतने बड़े व्यक्ति के पास आकर इतनी छोटी भीख और मांगो? तो वामन देव ने कहा, जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों पर वश नहीं किया उसे अगर सारे विश्व का धन दोगे तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा, और जिसने मन और इंद्रियों पर वश कर लिया वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। जैसे आज आप देखते हो समाज में अनेक करोड़ों पति व्यक्ति है, पर क्या वो संतुष्ट है? नहीं, और चाहिए और चाहिए, नया कारखाना खोलो और खोलो और खोलो। हाँ, तो भगवान ने इस ब्राह्मण से पहले पूछा, क्या तुम्हारा मन शांत है? फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम संतुष्ट हो? क्योंकि जब तक तुम संतुष्ट नहीं रहोगे तुम्हारा मन शांत नहीं रहेगा। तो ब्राह्मण को हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए, ब्राह्मण को हर स्थिति में शांत रहना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मण का स्वागत किया। भगवान ने हमें फिर से उदाहरण दिया किस प्रकार हमें व्यवहार रखना चाहिए ब्राह्मणों के साथ। फिर भगवान ने पूछा, आप यहां आए हो इतनी दूर की यात्रा करके, कोई संदेश लाए हो मेरे लिए? भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्हें पता था ब्राह्मण क्यों आया है। फिर भगवान ने वो पत्र पढ़ा, पत्र जो किसने लिखा था? रुक्मिणी ने पत्र भेजा था इस ब्राह्मण के हाथ। रुक्मिणी ने खास ऐसा ब्राह्मण चुना था जो बिल्कुल धोखा नहीं देगा, जो पूरा विश्वास का ब्राह्मण था। तो फिर भगवान ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि मेरा कल विवाह होने वाला है शिशुपुला के साथ। रुक्मिणी इतनी खूबसूरत थी कि सारे पृथ्वी के राजकुमार चाहते थे कि उनसे विवाह हो, सारे उनको देखते ही वो अपने घोड़ों से गिर जाते थे, इतनी खूबसूरत थी रुक्मिणी। तो रुक्मिणी, फिर भगवान ने पत्र पढ़ा कि उनका विवाह होने वाला है शिशुपाल के साथ। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने दारुका को बुलाया और उन्होंने 5 घोड़े एकदम तैयार किए, अलग अलग रंग के, हर घोड़ा अलग अलग रंग का था। जैसे भगवान कृष्ण के समय गायों से अलग अलग सुगंध का दूध निकलता था, तो 5 घोड़े थे, 4 या 5 अलग अलग रंग के, और 1000 मील की यात्रा इन घोड़ों ने 12 घंटे में कर दी। 12 घंटे में 1000 मील की यात्रा, अंदाजा लगाओ। रुक्मिणी बड़े उत्साह के साथ राह देख रही थी, उसकी शादी का समय निकट आ रहा था। रुक्मिणी ने कुछ सूचना नहीं मिली ना भगवान के द्वारा, वो ब्राह्मण भी वापस नहीं लौटा। तो रुक्मिणी सोचने लगी, शायद मेरे पापों का परिणाम है, ब्राह्मण भी नहीं लौटा, भगवान को उन्होंने पत्र में लिखा था मेरा अपहरण कर दो नहीं तो जबरदस्ती मेरी शादी हो जाएगी शिशुपाला के साथ। शिशुपाला के पिता का नाम था धर्मघोष, और उनके पिता को पता था, दूसरे राजकुमारों को पता था कि शायद कृष्ण अपनी सेना के साथ आएगा अपहरण करने के लिए। तो होशियार थे वो लोग। तो धर्मघोष अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे हुए थे। अगर कृष्णा या बलराम पहुंच गए तो उनको सबक सिखाया जाएगा। जरासंध जिसको भगवान ने अनेक दफा हराया था, जरासंध भी अपनी सेना लेकर तैयार था। तो रुक्मिणी राह देख रही थी, कोई संदेश नहीं आया। तो सोचने लगे कि शायद मेरी पूजा में कुछ कमजोरी रह गई है, और बड़ी दुखी थी। फिर उसका बाएं आंख ट्रेमलिंग ब्लिंकिंग भड़कने लगा। तो उन्हें लगा कि अब शायद कोई अच्छा संदेश आएगा। फिर वो ब्राह्मण ने प्रकट हो गया। जैसे ही वो ब्राह्मण प्रकट हुआ, रुक्मिणी ने पूछा, श्याम सुंदर को आपने वो पत्र दिया मेरा? उसने कहा दिया। श्याम सुंदर बाहर खड़े हैं अपने और घोड़ों के साथ। और बलराम ने जब देखा कि भगवान आगे बढ़ रहे थे विस्माका के राज्य के प्रति की तरफ, तो बलराम को पता था कि शायद वहां गड़बड़ होगी, शायद वहां युद्ध होगा। तो बलराम अपनी सेना लेकर भी वहां पहुंच गए थे। और फिर रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था, रुक्मिणी बड़ी होशियार थी, कह रहा कब अपहरण करना, क्योंकि ये रिवाज था कि शादी से पहले वो दुर्गा जी के मंदिर में जाती थी उनके खानदान के सदस्य। और तो रुक्मिणी ने पूरी सूचना दी थी उनका अपहरण कब करना चाहिए। तो उसी पत्र के अनुसार जब रुक्मिणी जा रही थी दुर्गा मंदिर में पूजा के लिए, भगवान ने आकर उसका अपहरण कर लिया। और अपहरण करके घोड़े में लेकर भगवान जा रहे थे। तो जो रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, उसके हृदय में जलन थी भगवान के प्रति। उसकी इच्छा थी कि रुक्मिणी की शादी हो शिशुपला के साथ। रुक्मिणी के माता पिता भी तैयार थे उनकी शादी हो, जहां की रुक्मिणी की इच्छा थी। पर रुक्मी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। रुक्मिणी ने जब देखा कि उसकी बहन का अपहरण कर दिया कृष्ण ने और वो घोड़े के साथ भाग गए, तो रुक्मी अपनी सेना को लेकर भगवान के पीछे भागे। और जब वो भगवान के पीछे भागे तो भगवान को कहा, तुम डरपोक हो, भाग रहे हो। भगवान ने बड़ी सरलता के साथ उसके सारे धनुष तोड़ दिए। और फिर भगवान रुक्मिणी ने भगवान से प्रार्थना की, आखिर वो मेरा भाई है, उसे छोड़ दो। भगवान ने उसके बाल मूछें वगैरह सब काट दिए। तो रुक्मिणी जो थी भगवान की सबसे खूबसूरत पत्नी थी। तो यहां कहा जा रहा है कि हमें परम भगवान करके शरणागत होना चाहिए। तो भगवान के शरणागत होने का अर्थ है उनके नामों में रुचि लेना, उनकी लीलाओं में रुचि लेना। जैसे हमने संक्षेप में रुक्मिणी की कथा की चर्चा की, रामानंद मनोवेन्द्र पुरी की चर्चा की, उनकी इच्छा, उनके उपदेश, उनके गुण, इन सब विषयों का स्मरण करना। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, हे असुरों के पुत्र, तुम इस प्रकार का व्यवहार करो जैसे परम भगवान संतुष्ट होंगे। और परम भगवान किससे संतुष्ट होंगे? वो संतुष्ट होंगे जबकि आप उनकी इच्छा के अनुसार करो। हम सबका भाव क्या होना चाहिए? जो जिस कार्य से भगवान संतुष्ट होते हैं उस कार्य से हम संतुष्ट होते हैं। अक्सर साधारण स्थिति में हम सोचते हैं हमारी खुशी में भगवान की खुशी है ना। जिस कार्य से हम संतुष्ट होंगे उस कार्य से भगवान संतुष्ट होंगे। पर भक्त का क्या भाव रहना चाहिए? भगवान की खुशी में हमारी खुशी। और सबसे ऊंचे कोटि का भाव क्या है, जब आप भगवान की सेवा करना चाहते हो बिना किसी उम्मीद के। जैसे माधवेंद्रपुरी की कथा में आपने देखा कि जब माधवेंद्रपुरी को पता लगा कि वही ग्वाला जिसने उन्हें दूध पहुंचाया था, तो माधवेंद्रपुरी शर्मिंदा हो गए, शर्मिंदा हो गए, उन्होंने भगवान से सेवा ली। तो इस ऊंचे कोटि के भक्त सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, सेवा लेना नहीं चाहते। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि परम भगवान के शरणगत हो जाओ। आगे कहते हैं, सब जीवात्माओं पर दया करो और उन्हें भक्ति योग का ज्ञान दो, तुम उनके शुभचिंतक बन जाओ। तो यहां यह कहा जा रहा है कि जीव अनेक योनियों पर प्रचार करो, लोगों को शिक्षा दो। किसकी शिक्षा? भक्ति योग की शिक्षा। तो जो वैष्णव भक्त हैं वो क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। परा दुखा दुखी, जब वो देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति भौतिक कार्य में जुड़े हैं, तो वैष्णव भक्त क्या सोचते हैं, कैसे उनका उद्धार किया जाए। और प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, जब मैं देखता हूं कि इस प्रकार बच्ची दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे अत्यंत दुख होता है। तो इस आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज अपने साथियों को ये आदेश दे रहे हैं कि सब जीवात्मा पर दया की भावना करो। सब जीवात्मा को क्या करो? भगवान का उपदेश दो। और अगर तुम सबको भगवान का उपदेश दोगे तो तुम उनके शुभचिंतक बन जाओगे। तो जो असली मित्र है वो है जो आपको भगवान का ज्ञान देता है। सूरदास सर्वधीनम, जो सबका मित्र है। तो हम सब में ये भाव होना चाहिए। आज के श्लोक में ये लिखा है कि परम भगवान जो हैं अधोक्ष जो हैं, तो परम भगवान अधोक्ष जो हैं उनको समझना आसान नहीं है, पर भक्ति योग के माध्यम से ही उनको तुम समझ सकते हो। तो यहां कहा जा रहा है, सब जीवात्माओं पर दया करो और तुम उनके शुभचिंतक बनो। तो असली शुभचिंतक कौन है? जो कि दूसरों को उपदेश देता है भगवान के ज्ञान के विषय में। जैसे आप भक्तजन जो प्रचार के लिए जाते हो, ग्रंथों का वितरण या हरि नाम, यह है प्रचार के कार्य। और इस कार्य में क्यों जुड़ जाते हैं हम? क्योंकि हम चाहते हैं हर व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़े। भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई गलती से हंसते हुए भी भगवान के नामों का उच्चारण करेगा तो इसका उसे लाभ पहुंचेगा। तो यहां प्रहलाद महाराज हम सबको आदेश दे रहे हैं क्या, कि हमें भगवान का ज्ञान देना चाहिए और उनके शुभचिंतक बनो। तो जो वैष्णव है वो हर व्यक्ति का शुभचिंतक है, क्योंकि जो वैष्णव भक्त है उसके हृदय में सदा यही भाव रहता है कैसे दूसरों का उद्धार किया जाए। प्रहलाद महाराज के विषय में आप क्या पढ़ते हो? उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पिता ने उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों में डाला, तो जब भी प्रचार ने प्रहलाद ने प्रचार के कार्य को काम नहीं किया, पर प्रहलाद को पहाड़ की चोटियों से फेंका, जहरीलू सांपों ने घेर लिया, जहर खिलाया, पर जब भी प्रहलाद प्रचार करते गए। इसी प्रकार इस कौन संस्था के अनेक भक्त हैं जिन्हें अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर किया उन्होंने क्योंकि उनके मन में एक ही भाव था, भगवान की सेवा, भगवान का प्रचार। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा से हम प्रेरणा लेते हैं। भौतिक समाज में लोग हीरो बनाते हैं, हाँ, कोई खिलाड़ी हो या राजनीतिक नेता हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम हीरो बनाते हैं, और हमारे हीरो कौन हैं? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे ऐसे भक्त, हम युधिष्ठिर महाराज, ऐसे जो भक्त हैं हमारे हीरो बनते हैं। उनके इशारे से उनके आदेश के अनुसार हम कार्य करते हैं। और हम सब का सदा यही भाव होना चाहिए कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे हम स्वीकार करें और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागें। इस विषय में रूपा गोस्वामी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। तो कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो, ये होना चाहिए हम सबका लक्ष्य। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा से हम देखते हैं, प्रहलाद महाराज की शिक्षा और नारद मुनि जी की शिक्षा में कुछ अंतर नहीं। इनकी शिक्षा क्या है? शुद्ध भक्ति को स्वीकार करो। तो हमें इसी शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को बिताना चाहिए। जो कार्य शास्त्र के अनुसार हो उसे स्वीकार करना चाहिए, जो कार्य शास्त्र के विरोध हो उसे किसी हालत में नहीं त्याग देना चाहिए। रूपा गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्ण भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जो कीमत भी भरनी पड़े भरो। जैसे कि मान लो आपके शरीर में कुछ बीमारी आती है तो जो भी कीमत भरनी पड़े आप उसका इलाज कराते हो। तो इसी प्रकार कृष्ण भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें भी अनेक चीजों को त्यागना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा, पहले कदम में गुरु की शरण लो, दीक्षा लो, सेवा करो, फिर पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। फिर अगर कुछ त्यागना पड़े भी तो त्यागो। तो जब आप कृष्ण भक्ति में आते हो जो प्रतिकूल कार्य हैं वो हमें त्यागना पड़ता है, पर ये त्यागने की शक्ति कहां से आती है? साधु संग के द्वारा और भक्ति के विधियों के पालन के द्वारा। साधु संग में रहोगे तो सदा शुद्ध संदेश प्राप्त होगा, और साधु संग में रहोगे तो जारी सरलता के साथ जो प्रतिकूल कार्य हैं उन्हें हम त्याग सकेंगे। तो हम सबका भाव होना चाहिए कि हम प्रहलाद महाराज की शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को मिटाएं। और आप पढ़ोगे आगे कैसे भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव के रूप में, जिसके द्वारा उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के वर दिए थे, सबका वर पालन रखते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। वो अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, आधे पुरुष आधे पशु वो प्रकट कर सकते हैं। वो अपने भक्त के लिए खुशी के लिए कुछ चुरा भी सकते हैं। भगवान का एक और नाम है मक्खन चोर। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। हमें इन लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए और इस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ोगे। हरे कृष्ण। यहां प्रचार पर भी बल दिया गया है, तो हमें ये प्रचार का उत्साह सारा साल रहना चाहिए। क्योंकि वैष्णव जो है वो परा दुखा दुखी है। जब वो देखता है कि बहुत एक विवादी व्यक्ति बहुत एक कार्यों से प्रयास कर रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए, तो अत्यंत दुखी हो जाता है। उसके मन में यही भाव होता है, कैसे मैं लोगों का उद्धार करूं। तो हम सबें यह भाव होना चाहिए कि जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये सेवा इसलिए हम करते हैं लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए। और आज हजारों उदाहरण हैं कि हजारों क्या लाखों उदाहरण हैं कि किस प्रकार लोगों का उद्धार हुआ इन ग्रंथों के माध्यम से। तो प्रचार का उत्साह सारा साल सब में होना चाहिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रियता कोई हुआ है ना? तो ये होना चाहिए हम सबका भाव। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हाँ कृपा विलास क्या? ये श्रीनाथ जी में है।
तो वहाँ गोपाल विग्रह की कथा, श्रीनाथ जी की कनेक्शन क्या है?
वही गोपाल विग्रह श्रीनाथ जी के रूप में उपस्थित हैं।
कैसे मतलब वहां से कैसे गए गोवर्धन से?
वो कथा मुझे नहीं वो पता, पर वो गोपाल वही गोपाल हैं श्रीनाथ जी में, ऐसे कहते हैं ना द्वारा में। हाँ कहते हैं कि मोगल राजाओं ने वहां नहीं, पर वहां से कैसे गए? मोगल राजा ने वहां अटैक किया था तो उसे उठाकर डीडीज को ले गए थे।
वो मेरे से बात में वो प्रश्न।
हाँ बोलो क्या प्रश्न?
नहीं है दया है उनके प्रति, पर नौवा नंबर हम बोलते हैं ना आशुधालुओं को कृष्ण महिमा का उपदेश देना।
प्रचार के लिए प्रचार सबको कर सकते हो, चिंता मत करो। जैसे आप हरि नाम सबको कह सकते हो कि हरि नाम का उच्चारण करो, प्रचार सबको कर सकते हो, पर गहरा प्रचार कि हरे का क्या अर्थ, ये अर्थ, ये सब आप समझाना जब दूसरे व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा हो। प्रचार के दौरान आप सबको प्रचार करें, ये थोड़ी कि जब आप हरिना में जाते हो हम लोगों से पूछते हैं तुम्हारे श्रद्धा है तो इधर खड़े हो सकते हो, नहीं तो जाओ। हम जब किताब बांटते हैं सबको अप्रोच करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं, जब वो देखते हैं ये हम सबको प्रचार कर रहे हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। नहीं अपराध नहीं होगा, उल्टा प्रचार नहीं करोगे तो अपराध होता है। और कोई कौन से समझे महाराज?
हरे कृष्णा। तो गोपाल विग्रह कैसे गए गोवर्धन से वहां श्रीनाथ जी के रूप में कैसे गए? तो माधवेंद्रपुरी जो चंदन लेने गए तो रेमणा में ही रह गए, इनकी समाधि उधर ही है। तो गोपाल जी की सेवा के अधिकार माधवेंद्रपुरी दो ब्रह्मचारी को देकर गए थे, तो उनकी बात में फिर कौन सेवा करेगा ब्रजवासी लोग? इसके निर्णय लेने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी के पास में आए, रघुनाथ दास गोस्वामी को विग्रह की सेवा का अधिकार दे रहे थे, लेकिन वो तो भजन में व्यस्त रहते थे। लेकिन बल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विठलेश्वर, उनके बड़े पुत्र थे, तो उनको रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ उनके अच्छे संबंध था, तो उन्होंने विठलेश्वर को सेवा का अधिकार दिए। तो इसी प्रकार बल्लभाचार्य संप्रदाय में वो विग्रह चले गए और उन्होंने लेकर फिर उनको यहां पर स्थापना किया। संक्षेप में हरे कृष्ण।
लास्ट क्वेश्चन। Yes.
हरे कृष्णा। ये सच है क्या कि हम भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान को देना चाहिए? कि अगर हम भगवान को वात्सल्य भाव से पूजा करते हैं तो हमको सिर्फ भगवान को देने का है मौका मिलेगा, ऐसा क्या है?
भगवान से शुद्ध भक्ति मांग सकते हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, नंदनम दर्जनम संदरम कविता हुआ जगदीश में ममा जमनी जमने छोड़े भक्त भक्ति रहित की आई। तो भगवान से आप शुद्ध भक्ति की प्रार्थना कर सकते हो।
हरे कृष्णा।
और वो प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से, ये प्रार्थना कर सकते हो कि हम माया में नहीं करें। एक समय है प्रभुपाद जी ठाकुर जी का स्वागत कर रहे थे न्यूयॉर्क मंदिर में, तो भक्तों ने पूछा बाद में आप भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, आई वॉज प्रेइंग टू कृष्णा दैट आई मे नॉट फॉल इन माया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कभी माया का प्रभाव नहीं हो, तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण।